जाया गोपी जाना बल्ला गिरिवर धारी यशोदानंदना प्रजा जनरंजना यशोदानंदना प्रजा जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधारी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जय जय नित्र स्वरण परिपाचर स्तोत्र सतः श्री समेश भक्तंत्र स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय जय नित्र परिपाचर स्तोत्र सतः श्री श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय समवत भक्तविंद की जय श्रीमद भागवत गंधराज की जय निजाय गौरवानंदे हरे नाम श्रेष्ठ मनुमपी सचिपुत्र मत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं मनुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुंड गिरिवर महो राधिका माधवासं प्राप्त ज्येष्ठ पतितकृपयां श्रीगुरुं तं नतो यस्मि मांसाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पैतानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्रादिकमादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ने वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दां वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दां आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्याच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते सा सुख निवेदितास्तद्भुद्धस्तनुभावपजितरुचिलीलाकृष्टसारस्वत्यां वैतनुतकृपाङ्गस्तत्तदीपं पुराणं तमखलवृजिनां वससो नुनतो यस्मि भवे भवे यथा भक्तिपादस्तवजायते तथा कुरुषदेवसनाथस्तनजत प्रभो नाम सङ्कीर्तनं दैश्च सर्वपापप्रणाशनं प्रणामं दुःखशमनस्तु तं नमामि हरिपरम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् नाष्टप्रयेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नाष्टकी श्रीमद् भागवतम नव स्कंद 13 अध्याय श्लोक नंबर 11 देवाऊचु विदेह उत्सुता काम लोचनेशु शरीरिना उन्मेषभ्यं लक्षित आध्यात्म संस्थित देवायुचु विदेह उष्णता कामं लोचनेषु शरीरिणां उन्मेषान् निमित्तेभ्यां लोक्तित्वाध्यात्म संस्थितं विदेह उष्णतां कामं लोचनेषु शरीरिणां उन्मेषन निमेषेभ्यां लोक्तित्वाध्यात्म संस्थितः विदेह उष्णता कामं लोचनेषु शरीरिणां उन्मेषन निमेषेभ्यां लोक्तित्वाध्यात्म संस्थितः
बोलो
देवा उचु देवताओं ने कहा विदेह बिना शरीर के उच्चतम तुम जीवित रहो कामम जैसे तुम्हारी इच्छा लोचनेषु दृष्टि में शरीर नाम भौतिक शरीर वाले उन्मेषन निमेषेभ्यां इच्छा अनुसार प्रकट अप्रकट हो जाओ लक्षित देखे जाकर आध्यात्म संस्थित आध्यात्मिक शरीर में रहते हुए अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जय श्री श्री गुरु गौरांग गगनधार जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जय। देवता ने कहा महाराज निमित्त शरीर से विहीन होकर रहे वो आध्यात्मिक शरीर से भगवान के निजी पार्षद बनकर रहे और वह अपने इच्छानुसार जब चाहे तो देहदारी लोगों को दिखे जा ना दिखे। तात्पर्य देवता चाहते थे कि महाराज निमित्त जीवित हो उठे किंतु वो दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना चाह रहे थे। ऐसी दशा में ऋषियों का प्रार्थना पर देवताओं ने निमित्त को वर दिया कि वह अपने आध्यात्मिक शरीर में रहे। आध्यात्मिक शरीर दो प्रकार के होते हैं, कभी कभी वह प्रेतात्मक शरीर का द्योतक होता है। जब कोई दुरात्मा व्यक्ति पाप कर्म करते हुए मरता है तो उसे पांच तत्व वाला स्थूल शरीर प्राप्त तो नहीं होता, अपितु वह मन बुद्धि तथा अहंकार वाले सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होता है। किंतु भगवत गीता में बताया गया है कि भक्तगण भौतिक शरीर त्यागने के पश्चात समस्त भौतिक कुलुष से मुक्त होकर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। त्यक्तं देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सहोर्जुना। इस तरह देवताओं ने राजा नेमि को वर दिया कि वह अशुद्ध आध्यात्मिक शरीर में रहे जो समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म कलम से रहित होता है। भगवान अपने इच्छानुसार दृश्य या अदृश्य रहते हैं। इसी प्रकार भक्त जीवन मुक्त होकर दृश्य व अदृश्य रह सकते हैं। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतम। भगवान कृष्ण हर किसी के लिए व्यक्त नहीं है, वह सामान्य व्यक्ति के लिए अदृश्य ही बने रहते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद गाज्यम इंद्रिय। कृष्ण तथा उनके नाम जस गुण एवं साथ समान भौतिक रूप से समझ में नहीं आते। जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ न हो, श्रवण मुख ही जिहादो, तब तक वह कृष्ण को देख नहीं सकता। अतएव कृष्ण को देखने की शक्ति उन्हीं की कृपा पर निर्भर करती है। आपने इच्छा अनुसार देखे जाने या न देखे जाने का वही विशेष अधिकार महाराज को दिया गया। इस प्रकार वह अपने मूल आध्यात्मिक शरीर से भगवान के पार्षद रूप में बने रहे। हम लोग का पीछे कुछ छूट गया था, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर का लेक्चर का दो टॉपिक छूट गया था। उसका बाद इस श्लोक में जो है उसको आगे जाएंगे, क्योंकि पीछे रखते रखते माइना भी दिया। तो हम लोग दशरथ महाराज का चरित्र विश्लेषण किया, कैकेयी क्या किया, शूर्पणखा का किया और मायानुजो किया, जो भौतिक जगत में आसक्ति वाला वस्तु उसको माया में क्यों करते हैं, और अभी सीताहरण हनुमान चरित और काठबिड़ाली स्क्विरियल, उसका हिंदी में क्या बोलता है, स्क्विरियल स्क्विरियल, वो काठबिड़ाल होता है ना जिसका बॉडी में तीन आंगुली लगा हुआ है, जो भी है, जो भी हमको उतना मालूम नहीं इसका। तो सीताहरण में हम लोग को क्या मिलता है, छद्मवेशी रावण सीता जी को हरण किया। कूर्म पुराण में कहते हैं जब कूर्म विप्र से भगवान चैतन्य महाप्रभु मिले थे, इसमें दो चार चीज देखने का है, विचार करोगे तो विचार अच्छा आएगा। जैसे जैसे कभी कभी गौरनिताय विग्रह रहता है, उसको हम लोग श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद नाम नहीं दे सकते हैं, यद्यपि सकल नाम भगवान में संभव है। क्योंकि हम लोग का जो विग्रह पूजित विग्रह है वो ठाकुर जी क्या है, गृहस्थ लीला है, संन्यास लीला में नहीं है। तो महाप्रभु का संन्यास लीला में नाम हुआ था श्री कृष्ण चैतन्य, बाकी जाएगा में सचिनंदन गौर हरि निमाय पंडित ये सब। तो जब चैतन्य महाप्रभु दाक्षिणात्य भ्रमण में गए थे तो कूर्म विप्र जो मिला उनको, तो उनको दुख हो गया था, यानी राम नाम जोपी विप्र, कूर्म विप्र राम जोपी विप्र जो मिला तो उनको दुख हुआ कि रावण ने सीता का हरण करके लेके चला गया, अभी भोजन कैसे बनाऊं। तो उनको समझाया और वहां से कूर्म पुराण से ओरिजिनल पाता ला के दिया, आप पूछी गया बोले देखो रावण ने माया सीता हरण करके लेके गया। यहाँ वास्तव में रावण ने माया सीता को हरण करके लेके गया था, क्योंकि अप्राकृत वस्तु प्राकृत वस्तु के द्वारा स्पर्श नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद ने कहा है, अथवा श्री कृष्ण नामादि न भवेद गाज्यम इंद्रिय, सेवन मुखी जिहादो पूर्वमेव सत्तदा। जब तक सेवा करने का इच्छा नहीं होगा, किसान लोग ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं ना, किसी को जबरदस्ती जाना पड़ता है और कोई सेवा हिसाब से जाता है, भाई हमारा सेवा है, जो जबरदस्ती जाना पड़ता है, जिसको इच्छा हो इच्छा नहीं अनिच्छा के से जाता है उसका ठाकुर जी सेवा नहीं लेते हैं। वो ठाकुर जी देखते रहता है जो करता करम दो, जैसे सेवा नहीं जिया दो, जिसको सेवा करने की इच्छा नहीं है वो अगर ठाकुर जी को सेवा करे उसका सेवा ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेगा। और जो सेवा करने के लिए जाता है उसका सेवा ठाकुर जी स्वीकार करेगा, क्योंकि प्राकृत और देह इंद्र के द्वारा ठाकुर जी का सेवा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण द्वारे करे सही देह करे तार चिदानंदमय अप्राकृत देह कृष्ण चरण सेवाए। तो जब तक देह अप्राकृत नहीं होता तब तक अप्राकृत वस्तु का सेवा नहीं किया जा सकता है, बाद में इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आगे तो रावण का दुर्बुद्धि बोला अभी कहां जाएगा, राम को तो भगाया, अरे भगवान को किस कौन भगा सकता है, हर जगह में भगवान विराजित है। जैसे नृसिंहदेव जब प्रहलाद ने कहा जो भगवान सर्वत्र है, बोला खंभा में, बोला हाँ हमको दिखाई क्यों नहीं देता है, वो हमको तो दिखाई दे रहा है, भगवान हंस रहा है नृसिंहदेव, बोला हमको तो यहाँ है, यही भगवान सर्वत्र है तो क्या रावण भगवान को भागा सकता है। तो उसी प्रकार अगर हम सोचे जो ठाकुर जी है, ठाकुर जी है ना, ये किसको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो इनका भोग का वस्तु मैं पहले खाऊंगा, और रावण का सीताहरण। जगन्नाथ महाप्रभु क्या बोला, कॉमन लाइन को दर्शन करके आए हो, तो जगन्नाथ का आंख बहुत बड़ा बड़ा है, सब देखता है कौन क्या करता है क्या नहीं करता, उनको सब दिखाई देता है, ये कुछ बोलता नहीं है, सब देखते रहते हैं। बोलती लो रावण गिरी करने दो ना, रावण गिरी कौन कितना करेगा करने दो, बाद में कहां है ना हनुमान आएगा और उस रावण का लंका का दहन करके उसका सत्यनाश करके आ जाएगा, सही अवस्था है रावण का विचार। इस प्रकार हम सबका ये रावण बनने का अधिकार है, हम सब भगवान को भोगा दे करके भगवान का संपत्ति को भोग करने का बुद्धि हमारे पास है, क्योंकि हम जगत को वंचित करना चाहते हैं और हम खुद वंचना में रहना चाहते हैं। रावण अगर सीता जी को चरण में प्रणाम करके कहते थे हे मातः अभी कृपा करके आप हमारा भी कुल का उद्धार करने के लिए हमारा लंका में पधारिए, तो सीता जी स्वेच्छा से चला जाते थे, लेकिन जबरदस्ती उठाया लेके गया। तो इस प्रकार रावण का सीताहरण है। रामचंद्र का क्या है, साधारण लोग श्री रामचंद्र को नहीं जानते, जो सीता को हरण नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अब रामायण पढ़ो देखो पूरा है, कोई अध्याय शायद वो राम रोते रहते हैं, इसको बोलता है विप्रलंब भाव। रामायण में द्वादश रस है लेकिन करुण रस का प्राचुर्य रामायण में ज्यादा है, हर समय दुख ही दुख है। साधारण लोग राम सीता को क्या समझते हैं, माइक वस्तु होगा और इस प्रकार स्त्री पुरुष समझा दे भगवान अगर क्या लड़की के लिए बाहर औरत के लिए रो रहा है, क्या बोलता है अगर सीता मुझे नहीं मिला तो इस जगत में किसी को हम पोतनी के साथ रोने नहीं दूंगा। राम कह रहे हैं रामन पढ़ो है, बोले जिस प्रकार हमारा सीता चला गया अब किसी का स्त्री नहीं रहेगा, कितना अच्छा होता था। इस प्रकार कह जाते हैं वास्तव में भगवान और भगवान का शक्ति में कोई विच्छेद नहीं होता है। ये जो श्री राम का सीता अन्वेषण लीला है ये जगत को वंचित करने के लिए विमुख वंचन लीला है। इसमें शिक्षा क्या है, अप्राकृत भगवत स्वरूप में जो व्यक्ति अविश्वास करता है वो शास्त्र का प्राकृत तात्पर्य अवगम्य नहीं हो सकता है। एक भगवत गीता में श्लोक है, श्रद्धावानो लभते गानम तत्परे संजितेन्द्रियम गानं लब्धा परं शांति मतिरनाधि गच्छति। इनका श्रद्धा नहीं है वो शास्त्र समझ नहीं सकता है, तो शास्त्र समझने के लिए पहले श्रद्धा का आवश्यक है, ये फास्ट। बाद में संजत इंद्रिय, अगर इंद्रिय संयम उसका नहीं है लेकिन अगर शास्त्र में श्रद्धा है तो शास्त्र अवधारण कर सकता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को संयम कर सकता है लेकिन शास्त्र में श्रद्धा नहीं है वो शास्त्र का अवधारण नहीं कर सकता, इसलिए तो मायावादी। मायावादी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है लेकिन भगवान में और भगवान का शक्ति में और भगवान का शास्त्र में उसको विश्वास नहीं है, इसलिए वो शास्त्र को अवधारण करने में अपरान्मुख है। तो इसमें से क्या है, जो व्यक्ति श्री रामचंद्र का माया मनुष्य गान करते हैं उनको प्रताड़ना करने के लिए श्री रामचंद्र अपना दुर्बलता अथवा अपना आश्रित वात्सल्यता का दर्शन कराया। जो भगवान का आश्रय लेके जो भी व्यक्ति रहेगा भगवान उसको कभी भी गायब होने नहीं देंगे। तो सीता देवी भगवान का आश्रित वस्तु है, तो भगवान ने ढूंढ कर उसको निकाला। उस प्रकार जो भी व्यक्ति हरिभजन कर रहे हैं वो कभी भी गायब नहीं होगा। गायब शब्द का अर्थ क्या है, माइक संसार में डूबेगा नहीं, कभी ना कभी उबर के निकल जाएगा। ये भगवान का वात्सल्यता है। अब हनुमान चरित्र, राम भक्त हनुमान रावण का व्यवहार में क्रुद्ध होकर के क्या किया, लंका को दहन कर दिया। उस प्रकार अगर हम लोग भी रावण के जैसे व्यवहार करें तो हमारा संसार को हनुमान आके क्या करेगा, जाकर चला जाएगा। बड़ा तुम इस संसार के लिए भगवान का संपत्ति खा रहे हो ना, अभी देखो तुम्हारा संसार का क्या कर रहा हूं, आग लगा के चला जाएगा, फिर लास्ट में अकेला पड़ जाएगा। अगर साधु संग हुआ तो गौर किशोर दास जी महाराज जो हुआ सो अच्छा हुआ, चरण अवधित। गौर किशोर दास जी महाराज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो धान का बिजनेस करता था, जो किराना है ना वो किराना का बिजनेस था उनका। पत्नी मर गया, जय राम जी हो गया, रहा तुम्हारा बिजनेस, मैं चला नवद्वीप। ये गौर किशोर दास जी महाराज। इस प्रकार हनुमान ने लंका को दहन किया। हनुमान का जो वो कार्य है वो बिल्कुल नीति बहिर्गत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति सेव्य वस्तु को उल्लंघन करता है प्रकृत सेवक उनको समुचित दंड देने के लिए सेवा का चमत्कार का विधान करते हैं। बहुत सारा उदाहरण मिलेगा। जो व्यक्ति भगवान को भोगा देना चाहते हैं भगवान का प्रकृत सेवक क्या करता है, उसको ही निकाल देते हैं, जाओ तुम यहां से। यहां पर सिक्खानी विषय यह है, श्री राम सेवक हनुमान जी विकारी जो जगत है, जगत परिवर्तनशील है, संसार किसे कहते हैं, जो खिसक से जाता है, जिसको हम पकड़ने जाता है वो भागते जाता है, ये संसार है। हम सरोती इति संसार, हम जितना भी इसको बांधने का कोशिश करेंगे वो उतना खिसक से जाएगा। आप सोचो आप पत्नी से ज्यादा प्रेम करो, बच्चा से ज्यादा प्रेम करो, थोड़ा प्रतिवेशी से ज्यादा प्रेम करो, वो क्या करेगा, वो दूर भागते जाएगा, वो कभी आपको पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए तो संसार कहते हैं। अगर वो पकड़ में आ गया तो संसार किस लिए है। अगर पूरा संसार आपको बात सुने, आज पूरा संसार का आपको हो, सब मिलकर हरिभजन करे तो संसार संसार नहीं रह गया, लेकिन वो इस प्रकार सुनेगा नहीं, तभी तो संसार है। किसी को भी आप अच्छा शिक्षा दो वो स्वीकार करने वाला नहीं, वो क्या सोचेगा, मैं जो कहता है वही सही है, बाकी सब गलत है। यही संसार का परिणाम है। एक संसार का औकित कर हनुमान जी जानते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रभु के लिए बा भगवान के भक्तों का यही एकमात्र कृत्य है। और भक्त इस प्रकार कार्यों में जब विमुख होता है तब उनका प्रभु सेवा लुप्त हो जाता है, और इसमें आत्मतृप्ति जड़ भोग कामना का सिद्धि लाभ होता है। अभी समुद्र बंधन में जो काठबिड़ाल है कुरियल, उसका कहते उनका भी सेवा क्या है, भगवान श्री रामचंद्र उनका भी सेवा स्वीकार किया है। क्योंकि काठबिड़ाल क्या करता था, पानी में कूदी मारता था, रेती में जाके पाल्टी खाता था, फिर जाके दोबारा पानी में कूदी मारता था। तो हनुमान का आया गुस्सा, हनुमान बड़ा बड़ा पत्थर लेके आ रहा है, बोला तुम क्या कर रहे हो, पकड़ा उसका गर्दन, फिर बाहर निकल। हम लोग कभी भी करते हैं ना, तुम क्या सेवा करोगे, चलो बाहर निकलो। इस प्रकार नहीं करना चाहिए, जिसका जो अधिकार है उस प्रकार सेवा करने उसको देना चाहिए, जिसका जिससे सामर्थ्य है। उसी सभा में उसको अधिकार है, उस सभा को उनको वंचना नहीं करना चाहिए। इसलिए जब हनुमान जी उसको पकड़ के श्री रामचंद्र के पास लाया तो बोला, हनुमान क्या कर रहे हो तुम? मैं ये देखो हमारा सभा में बाधा कर रहा है। तो बोले तुम क्या कर रहे हो? बोला आपका सेतु मंद में सहायता कर रहा हूँ। कैसे? रेती लाकर डालता हूँ। बोले कैसे डालते हो? मैं बोले पानी में कूदी मारता हूँ, मेरा पूरा शरीर गिरा हो जाता है, फिर रेती में जाकर पार्टी खाता हूँ, पूरा रेती लाग जाता है, फिर जाकर कूदी मारता हूँ तो रेती वहां लग जाता है। भगवान प्रसन्न होकर उसका बाया हाथ उनको ऐसे करके लगाया, उस पर पूरा बॉडी में देखो तीन अंगुली का निशान है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी का कृपा है। इसलिए भगवान करुणामय है। जो दुर्बल व्यक्ति है उस दुर्बल व्यक्ति को भी सेवा अधिकार प्रदान करते हैं। इसका इंटरनल व्याख्या करूं, इसको उल्टा अर्थ हो जाएगा तो सब अपने आप को दुर्बलता समझेंगे। तो सुदुराचार भजते मामन्य भाक साधुर एव समन्तव्य सम्यक व्यवहित। इस श्लोक का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या एक्सप्लेनेशन किया वो पढ़ लेना। ऐसा दुर्बल व्यक्ति भी अगर अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है तो भी भगवान उसका सेवाधिकार करते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा गौर लीला में जाना चाहिए। गौर लीला में हम लोग क्या देखते हैं? छोटा हरिदास का चरित्र। छोटा हरिदास उसको भेजा कौन? भगवान आचार्य। छोटा हरिदास क्या था? सन्यासी। बात त्यक्तगृह, त्यक्तगृह का दो अर्थ है, एक ब्रह्मचारी एक सन्यासी। ब्रह्मचारी भी त्यक्तगृह होता है, सन्यासी भी त्यक्तगृह होता है। उसका गृह का साथ कोई संपर्क नहीं होता है। अगर गृह का साथ इस आश्रम में रह करके अगर गृह का साथ संपर्क है तो त्यक्तगृह नहीं, वो गृहस्थ है। क्योंकि महाप्रभु जो सिद्धांत, इसलिए बोलते हैं ना, महाप्रभु का सिद्धांत का विरोधाभास कभी नहीं करना चाहिए, उनको सीखना चाहिए महाप्रभु क्या चाहते हैं, महाप्रभु की विचारधारा क्या है, गौर शब्द का अर्थ क्या है, गौरांग को किसे कहते हैं, ये जानना आवश्यक। तो जब भगवान आचार्य को ज्ञान नहीं था, एक सन्यासी को एक माता जी को पास भेजना नहीं चाहिए। क्या भगवान आचार्य नहीं जानते थे ये सन्यासी क्या विधि निषेध क्या है? जानते थे, फिर भी उन्होंने उनको भेजा। जाओ माधव देवी से थोड़ा राइस लेके आओ। राइस लाए, ला के दिया। माधव देवी कैसा था? एकदम बुढ़ा, 16 साल का लड़की नहीं था, 70-80 साल का बुढ़ा था, वृद्ध। तो ये सब काम भगवान का सवाल नहीं आता है। राइस लाया, भगवान जिसको पाक किया, महापुरुष को भोजन किया। फिर भोजन करने के बाद अभी सेवा स्वीकार किया कि नहीं किया? दुर्बल चित्त व्यक्ति भी अगर निष्कपट भाव से भगवान का सेवा करता है तो भगवान उसका सेवा स्वीकार करता है। लेकिन बहिर्जगत में शिक्षा देने के लिए उसको ताक कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम भी ऐसा करें, क्योंकि महापुरुष लास्ट में क्या बोला, महापुरुष को ताक कर दिया। पाशिष्ट क्या किया? बोला गला में पाथर लगाओ और प्रयाग में जाके डुबकी मारो, यही तुम्हारा पाशिष्ट है। इसलिए जो सकरुण हृदय भगवान करुण हो जाता है और दुर्बल व्यक्ति का भी भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। उनका जो अन्न ला के दिया था भगवान, उसको भोजन किया, सेवा का स्वीकार किया इस प्रकार, लेकिन उनको स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसका आचरण सही नहीं किया। हमारा शिक्षणीय विषय क्या है कि हमें अनाचार करके भगवान का सेवा नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए शिक्षण विषय काट बिलार के दृष्टांत दिया भगवान ने। इस प्रकार सबल और दुर्बल जो भी जिस प्रकार व्यक्ति है वो अपना सेवा में सौ नैपुण्य प्रदर्शन कर सकते, जिसका जैसे सेवा करने का ताकत है। दुर्बल व्यक्ति भी अपना अपना योग्यता अनुसार में सेवा संप्रदान कर सकते हैं। जैसे मंदिर बन रहे हैं, दो चार दिन पहले दो व्यक्ति 20 रुपया दे के गया, बोला प्रभु जी मेरे लिए 2 लगा देना। बोले ठीक है लाओ, अभी क्या करेंगे? बोला नहीं, हम 2 का पैसा नहीं लूं, लेना पड़ता है। ये 2 तो भगवान का मंदिर में दिया। भक्ति सिद्धांत तो ठाकुर कटक में प्रचार कर रहे हैं, साथ में पूरा सब ब्रह्मचारी बिंद विराजित है। एक माता जी घर से बाहर निकाल के कुछ देने के लिए गया, उनका सेवक लोग देखा है तो दो दो नींबू है वो कागजी, उनका नींबू जो हम लोग जलते हैं, बोले दो नींबू हम लोग कैसे लूं, वो सब चला गया। भक्ति चरण ठाकुर कुछ दूर जाना वो रिटर्न आया और अपना अंजलि इच्छा फैला करके बोला माते दे दो। फिर सेवक खड़ा बोला इनका इतना सामर्थ्य तुम लोग इसको स्वीकार क्यों नहीं किया, बोला दो नींबू लेकर हम क्या करेगा, बोले ये भी भगवान का समय में लगेगा। इसलिए जिसका जितना अधिकार है उस अधिकार अनुरूप वो सेवा करता है और उस सेवा को स्वीकार करना सेवक का कर्तव्य बनता है जो भगवान का सेवा में लगा हुआ है। तो भी एक काट भी डाले गया सेवा का स्वस्थ होता है। इस प्रकार शिक्षा क्या है इसमें, भगवान अकपट सेवक का सेवा चेष्टा स्वीकार करते हैं लेकिन कपट व्यक्ति का सेवा स्वीकार नहीं करेगा। तो भी ख्याल रखना है जो अकपट भाव में सेवा करते हैं उसमें अगर कुछ वैगुण भी रह जाए फिर भी उनका सेवा भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन कपटी व्यक्ति का अगर कितना भी अच्छे से भगवान का सेवा करे भगवान उसका सेवा स्वीकार कभी नहीं करते हैं। और शिव नारद इत्यादि महाजन जिनका सेवक है मैं अपना तुच्छ व्यक्ति हूं, मैं उसका उस महान व्यक्ति का सेवा कैसे करूं, इस प्रकार जो व्यक्ति विकलित होकर भगवान का सेवा करते हैं वही भगवत सेवा करने का योग्य होता है। ये रामायण का तात्पर्य कमलोचन पूर्वक पूछा था हमको, वे जिस प्रकार कृष्ण संगीता में भक्तिनाथ ठाकुर कृष्ण लीला का तात्पर्य दिया है क्या रामायण में ऐसा कोई शिक्षणीय विषय है, बोला है। तो आज समापन हुआ वो तीनों दिन में किधर कभी भी नहीं रहा। जो भी कभी हम लोग आते हैं जो श्लोक बाई तात्पर्य में ऋषि लोक प्रसन्न हो गया निमिका यज्ञ में, तब उन्होंने देवता लोग भी उसका यज्ञ में आए, आकर के उनको कहा इस यज्ञ में हम लोग सब संतुष्ट क्या वर चाहिए, तो ऋषि लोग कहा जो हमारा यजमान जिंदा हो जाए। निमि ने क्या बोला, शरीर क्षणभंगुर दुर्लभंग मनुष्य जन्मंग देहिनां क्षणभंगुर, मनुष्य जन्म दुर्लभ है लेकिन क्षणभंगुर है, कब मरेगा हमको पता नहीं है लेकिन हम मरेंगे ये गारंटी है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, कब मरेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है लेकिन हम मरेंगे। तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्, इससे भी दुर्लभ क्या है साधु का दर्शन। साधु का अपर नाम क्या है, वैकुंठ प्रिय, भगवान का एक दूसरा नाम है वैकुंठपति वैकुंठ विकुंठ, वैकुंठ नाम है भगवान का, तो उनका जो प्रिय है तो साधु। मनुष्य शरीर मिल भी जाए लेकिन साधु नहीं मिलेगा, साधु दुर्लभ है। तत्ता भी दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम्, बड़े देह का जिंदा करके क्या फायदा है, आप लोग का दर्शन हो गया अभी आप लोग मुझे अगर वर देना चाहते हो तो मुझे भगवान का सेवा करने का सौभाग्य इस प्रकार वर प्रदान करो। ऋषियों का बात आज देवता का कृपा दोनों का सामंजस्य बैठाने के लिए देवता ने क्या कहा, तुम जीवित रहो आज जीवित ना भी रहो। तो प्रभुपाद जी पहला पैराग्राफ में बोलता जीवित ना रहने का अर्थ है भूत बनना। भूत देखा कभी नहीं देखा ना, तो मेरा साथ चलो मैं भूत देखा दूंगा जितना देखना है। भूत का साथ कभी सूखे रहा नहीं, हम सूखे रहा है, एक बाजू में एक बाजू भूत, जितना हिलाएगा ना वो हिलता ही नहीं, वो ऐसा करके हाथ उनको अंदर ही चला जाता है, ये भूत होता है, आपको फंसाने के लिए बहुत कुछ करता है। वो बुलाएगा पा जा मेरे साथ, आप जाते रहो सीधा जाओ तो ठीक है, खड्डा में अगर कुदी मारा ना तो वहीं पर गया। खड्डा में कुदी कभी नहीं मारने का, साइड में नीचे उतर के जाने का, तो भूत आपको कभी मार नहीं सकता है। कितना भी कोशिश करे कभी नहीं मार सकता है। आप मानोगे नहीं, एक व्यक्ति के यहाँ 14 भूत था। वो 14 भूत क्या करता, उसको कंधा में लेके किधर भी जाना है लेके चलता था, किधर भी। उसका खेती बाड़ी से भूत करता था। अगर उसका खेती में पानी नहीं, भूत को बोला था चलो अभी तालाब से पानी लाके खेती में भरो, तो पूरा भूत लोग ला दो तालाब को भर, एक तालाब से पानी लेके खेती को भर देता था। ऐसा ही भूत है, लास्ट में भूत ने इसको मार दिया। ये भूत का स्टोरी है, देखना है तो चलो बड़ा बड़ा भूत दिखा देंगे। अरे ऐसे आपको पागल जो भी करना है लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी करना चाहिए आपको, सत्यनाश करना चाहे तो भी आप वो कर सकता है, इतना उसका पास ताकत रहता है। जो भी है, इस प्रकार एक शरीर है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति जैसे सुसाइड करके मरता है, गोला में फांसी लगा के मर देते हैं, रास्ता में एक्सीडेंट होकर मरता है, इसका अगला शरीर भूत का होता है, क्योंकि उनका आयु अभी तक समाप्त तो नहीं हुआ। इस भूत को शुद्धिकरण करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, गया। गया में एक प्रेत, प्रेत गया बोलकर जाएगा है, वहां पर जाकर उसको पिंडी प्रदान करो तो भूत शरीर से उसको मुक्त हो जाएगा। यहां पर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं, जो भक्तों लोग को भूत का शरीर प्राप्त तो नहीं होता है, उसको भी आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है जो दिखाई नहीं देता है। आज दिखाई देने वाला शरीर निमि को क्या दिया, आंख का पलक, ये निमि है। निमि महाराज समस्त भौतिक शरीर में पलक झपकने का जो काम है वो निमि महाराज करते हैं, तो सब कुछ देखते हैं कैसे। इस प्रकार निमि महाराज को देवता लोग वर प्रदान कर दिया। यहाँ दूसरा श्लोक भगवत गीता का देते हैं, नाम प्रकाशम सर्वस्व जोगमाया समावृतम। मैं सबका साथ में प्रकाशित तो नहीं होता है, मैं जोगमा के द्वारा आवृत रहता हूं। भगवान सब जगह में रहते हैं, सबको हम लोग शास्त्र के आधार पर हम लोग सब जानते हैं, लेकिन सच अनुभव तब होगा जब हम लोग का भी सिद्ध देव प्राप्त होगा, तो भगवान को हम लोग भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन भगवान इतना कृपालु है, आपने दर्शन देने के लिए स्थूल रूप धारण किया। स्थूल रूप क्या है, भगवान का शिविग्रह। ये भौतिक जीव वो जो भगवान को हमको दर्शन तो कर नहीं पाएगा, तो उनको ऊपर कृपा करने के लिए भगवान स्थूल रूप में अष्टमी कोई भी एक विग्रह के द्वारा भगवान व ठाकुर जी विग्रह रूपे विराजित है। शिविग्रह जेना माने से तो पाषंडी जन, जो शिविग्रह का शिकार नहीं करते पाषंडी है, उनका साथ अगर संभाषण भी हो जाता है तो कपड़ा वपड़ा धो के नहा लेना चाहिए। ये हरिभक्त विलास में उसको 5 शिष्यों का विधान है। जो ठाकुर जी को शिकार नहीं करता है, उसका दर्शन होगा तो सीधा बाथरूम में जाओ, कपड़ा वपड़ा खोल के नहा के बाहर आओ। महाप्रभु क्या बोला, विग्रह नहतमे साक्षात ब्रजनंदन। और एक जगह सनातन शिक्षा में क्या दिया, स्वरूप विग्रह नाम तीन एक रूप, तीने भेद नाय तीन चिदानंद रूप। स्वरूप में विग्रह में नाम में भेद नहीं है, तीनों एक रूप है, चिदानंदमय। ये बहुत जगह में इस प्रकार प्रमाण देते हैं। ते भगवान जोग माया का जरा समावृत रहते हैं। भक्तजन भक्ति भावित प्रमाजन छुरी भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय से विलोकंती विलोकंती लोकयंती विलोकंती, दो शब्द है। लोकयंती दर्शन करना, विलोकंती विशिष्ट रूप से दर्शन करना। तो भक्तजन भगवान को विशिष्ट रूप में दर्शन करते हैं, बाकी सब क्या दर्शन करते हैं, ये पगड़ी ठीक नहीं है, वो माला इधर क्यों दिया, वो हार का जो माला है ना मैचिंग में नहीं लगाया, वो सही मैचिंग नहीं है, वो मैचिंग देखने आता है भगवान को। वो देखता है किस जगह में क्या मैचिंग हुआ कि नहीं हुआ। वो इस प्रकार भगवान का मैचिंग दर्शन करता है। भक्त क्या दर्शन करते हैं, जैसे आप लोग जाओगे ना, गया कभी जाकर जयपुर जाओ, दो चार मंदिर घूमो, कोरोली जाओ, मदन मोहन को दर्शन करो और फिर चौरा गोपनाथ को दर्शन करो जाके, क्या पहना के रखता है, क्या धोती पहना के डाल जाए, ऊपर से कुछ कपड़ा उपड़ा है कि अपना माला उड़ा है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या भक्त उसको प्रणाम नहीं करता है, क्या भक्त विचार करता है माला नहीं डाला तो ऐसा क्यों पहना है, यहाँ विचार करता है क्या, वहां पर जाके किसी ने विचार नहीं करता, यहां पर आके विचार हो जाता है, क्योंकि यहां पर हमारा पांडित्य का प्रतिभा जो है ना, वो हम दर्शन कराना चाहते, देखो हमारे पांडित्य है, वहां पर इस प्रकार नहीं कह पाते हैं, चुपचाप ठाकुर जी को दर्शन करता है, प्रणाम करके बाहर निकल जाता है। साधु को सब जगह में सावधान रहना चाहिए कि किस जगह में कैसे करे, हमें ठाकुर जी को क्या करना है, दर्शन करना है, दर्शन देना है, हमें ठाकुर जी को दर्शन देना है, न दर्शन करना है। क्यों, शास्त्र कहते हैं कि अप्राकृत वस्तु है प्राकृत गोचर, भगवान अप्राकृत वस्तु है, हम प्राकृत नेत्र मन के द्वारा ठाकुर जी को दर्शन तो कर नहीं सकते हैं, अगर ठाकुर जी चाहे तो मुझे दर्शन कर सकता है। तो हमारा संकल्प क्या होना चाहिए, हम भगवान को दर्शन देने के लिए मंदिर जाते हैं, न कि भगवान को दर्शन करने के लिए जाते हैं। अगर भगवान को दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम इस प्रकार देखेंगे, मैचिंग देखेंगे, अगर भगवान को दर्शन देने के लिए जाते हैं तो हमारा दृष्टि तो है नहीं है। भगवान जिस रूप में मुझे दर्शन देंगे उसी रूप को हमें स्वीकार करना चाहिए, हमें विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं अथ नहं प्रकाशं सर्वत्र, दुर्योधन कोशिश किया, जरासंध भी कोशिश किया, शिशुपाल ने भी कोशिश किया, सब कोशिश किया कृष्ण को दर्शन करने के लिए, कृष्ण गोलूर का पीठ पर बैठ के भी दर्शन दिया, जब नरकासुर को वध करने गया था तो सत्यभामा को साथ लिया और गोरुर को बोला गोरुर आ जाओ, गोरुर को पीठ पर बैठा, गोरुर वाहन एक भगवान का नाम है, लेकिन फिर भी नरक समझ नहीं पाए भगवान है बोल के लगाया फाइटिंग। तो ये हमारा दुर्बुद्धि है, विचार नहीं करना चाहिए। भक्ति एक विज्ञान है, भक्ति करना सहज है, भक्ति लाभ करना सहज नहीं है। भक्ति सहज तो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भक्ति लाभ करना सबका बस में नहीं है। भक्ति लाभ करने जो क्या बोलते कौशल है, उसको जानकारी करने के लिए भजन शिक्षा गुरु के पास भजन शिक्षा करना चाहिए, तो भी समझ सकते हैं भक्ति क्या वस्तु है। इसलिए हमें भगवान को दर्शन करने क्या जा रहे, मंदिर जा किस लिए जा रहे हो, भगवान का दर्शन नहीं, भगवान का दर्शन देने के लिए जा रहा हूं, भगवान हमें दर्शन करे। अगर भगवान दर्शन करता तो भगवान का दृष्टिपथ में आ जाऊंगा। इसलिए संकल्प क्या होना चाहिए, जैसे जिसका संकल्प होगा भगवान उसको उसी अनुरूप फल देगा। जीव महाराज भगवान का दर्शन करने वाले क्या बोला, बड़ा तुम्हारा संकल्प हिसाब तुम्हें फल दूंगा, तुम्हारे लिए ध्रुव लोग जाओ, भेज दिया। हमारा भी संकल्प क्या होना चाहिए, लोग समझ गया होगा इसी प्रकार। इसलिए क्या कहते हैं, जयति जयति नामान मुरारे विरमित निज धर्म धान पुजादि जतनाम कथमपि सगजत्तं प्राणिनां मुक्तिदं जात परम अमृतमेकं जीवनं भूषणं मे। इस प्रकार विचारधारा होना चाहिए नाम जप करने के लिए। ऐकांतिक, जब तक ऐकांतिकता नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। इसलिए कहते हैं अथो श्री कृष्ण नामादि न भवेद गाज्यमेन्द्रिय सेवन मुखी जिहादो स्वयमेव पुरस्कदः। ये स्वयमेव हमें नाम ग्रहण कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, भगवान को प्रीति के लिए। अगर हमारा दृष्टि काउंटिंग में रह जाए तो हमारा जिंदगी काउंटिंग में बीत जाएगा। कितना हुआ, चार छह, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अरे आठ, एक गिनती में चला जाएगा, आठ आठ नौ गिनती रहेगा, चलो हो गया चलो हो गया, ऐसे चला जाएगा। क्या करना पड़ेगा, हम नाम लेते हैं भगवान इसमें खुश होते हैं, जो भी तो हम नाम लेते हैं, ये विचार लाना पड़ेगा तभी तो नामग्रहण होगा, नहीं तो नामग्रहण नहीं होगा। नमाचार वैधाय बटे शुद्ध नाम नहीं है, प्रभु नाम अपराध नाभासमय, प्रेम विवर्त जगदानंद पंडित ने लिखा है, नाम भजन प्रणाली। और भजन रहस्य ग्रंथ भक्तिनो ठाकुर, ये दोनों में दिया हुआ है। और जीव गोस्वामी, गोपाल गुरु गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भक्तिनो ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर और दूसर का है, इतना सारे व्यक्ति ने नाम का एक्सप्लेनेशन किया। तभी जानकारी रखोगे जान जाओगे, तभी नाम लेने का जो कौशल है वो जानकारी हो जाएगा। तो हमें एक क्या होना चाहिए, हम नाम लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो भी हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का प्रसन्नता के लिए हम नाम ले रहे हैं, फिनिश हो गया। अभी सोलो जॉब आएगा तो देखा जाएगा, ये सोलो का पीछे पढ़ने का जरूरी क्या है। इस प्रकार अथो इसलिए कहते हैं, अथो श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद गाज्य इंद्रे, हरे कृष्ण मन छापति क्या है बोलो। हाँ, उसको भी मिलता है, क्योंकि एक्सीडेंट को अपघात कहते हैं, स्वेच्छा से हो चाहे अनिच्छा से हो, देहपात तो हुआ, एक्सीडेंट किसलिए अपघात मृत्यु क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार कर्म किया जिस कर्म के कारण उसको भोगना पड़ता है। स्वेच्छा मृत्यु अलग हो जाता है, अभी किसी को समझ लो गाड़ी ने दबा के चला गया, तुरंत तो छूटता नहीं है, प्राण छूटने के टाइम लगता है, देह से जो आत्मा निकलने का समय लगता है, वो ऐसा धड़पड़ करते रहता नहीं करता है, वहां पर हम नहीं जाएगा, वो हमारा बहिर्भूत वस्तु है, उसको आप विचार करने का हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि उस लेवल में मैं नहीं हूं। इसका आलोचना बहुत जगह में हुआ है, ऐसा नहीं कि आप आज कर रहे हो, बहुत जगह में हुआ है, लेकिन मैं इसमें नहीं जाऊंगा। हम आपका कुछ है, साधारण व्यक्ति क्या है उसमें हम करेंगे, आचार्य लोग का क्या हुआ उसको हम विचार नहीं करेंगे। महाराज क्या कहते हैं, ताना भयतो मसते विकुर्मा जत शीर नमन्य एकापी दोपी नापी, उनको मेरे पास लेकर आओ जिनका सिर एक बार भी भगवान का चरण में दंडवत प्रणाम नहीं किया, तो उसका विचार कैसे कर सकते हैं। जमराज महाभागवत द्वादश महाजन में एक महाजन है, इतना बड़ा जज बोला, हम उसका विचार नहीं कर सकता है, हम कौन सा बड़ा जज बन गया जो उसका विचार करने जाऊं, ठीक है ना। हरे कृष्ण।